खामोशी। ओ अब मैं स्पष्ट समझ गया कि तुम मरना चाहते हो। पहले वो ये सोच रहा था कि हो सकता है जीना चाहता होगा, लेकिन अब वो ये कह रहा है व्यक्तम, स्पष्ट हो गया, व्यक्त हो गया मृत्यु कामोशी, तुम मरने की अभिलाषा किए हो, इसीलिए तुम इस प्रकार का बकवास कर रहे हो। अब समझ गया कि तुम मरने पर लात दे दिए हो, तुम मरना चाहते हो। व्यक्तम तुम मृत्यु कामोशी योति मात्रम विकथ से, तुम अति मात्रम विकथ से, अब तुम अपने औकात से बाहर बोल रहे हो। अरे तुमको यह भी स्मरण नहीं है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, ये भी जरा याद करो। और कहते हो कि तुम असुर हो, ये असुर विचार छोड़ो, हमसे बड़े हो गए। और तुम अति मात्रा में बोल रहे हो, और वो अति मात्रा में क्या बोल रहे हैं, ये भगवान को कह रहा है कि भगवान हमारे शत्रु हैं। और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा विचार गलत है, तो अति मात्रा में हो गया। बताइए तो अति मात्रम विकत से, तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो, तुम यह कह रहे हो कि मैं अपनी इंद्रियों को नहीं जीता हूं, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना कि हिरण्यकश्यपु इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियों के बस में है, और तुम इंद्रियों के विजेता हो। छी छी, बाप के सामने इस तरह कहने में तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है, तुम अपने को जितेंद्रिय कह रहे हो। समझ गया तुम अब मरना चाहते हो। जो व्यक्ति मरणासन होता है, मरने का समय जब उसका आता है, तो उसके मुंह से ऐसी ही बेतुकी बातें निकला करती। इतनी इतनी गलत बातें निकलती, प्रहलाद महाराज के मुख से गलत बात निकल रही है, और हिरण्यकश्यपु अपने समय से बहुत सुंदर बोल रहा है। और वे कहते हैं कि विष्णु सबके बंधु हैं, सुहृद हैं, और तुम असुर भाव को छोड़ो, तो इसको कहता है तुम आप बहुत गलत बोल रहे हो। मंद आत्मन शिविर विप्लवा गिरा, जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसके मुंह से ऐसे अटपटांग बात निकलने लगती है। अब मैं समझ गया कि तुम्हारे मरने का समय आ गया, और इसीलिए तुम इस प्रकार की उटपटांग बात बोल रहे हो। फिर कहता है तुम विष्णु के भजन का उपदेश कर रहे हो मुझको और इन बच्चों को किए हो। जस त्वया मंद भाग्युक्तो मदन्यो जगदीश्वरः, अरे मंद भाग्य, क्षण भर में तुम मरोगे। तुम ये कह रहे हो मेरे अलावा तुम दूसरा ईश्वर कह रहे हो, इस विश्व का नियंता कंट्रोलर तुम दूसरा मान रहे हो, और उसके भजन का उपदेश कर रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूं कौन है, कौन है वो ईश्वर जिसके तुम भक्त हो? मदन्य है, मेरे अलावा कौन ईश्वर है? मदन्य जगदीश्वर कौन असल, वो कहां है, कहां रहता है, पहले उसका पता बताओ, एड्रेस बताओ, कहां रहता है? मेरे अलावा अगर ईश्वर तुम स्वीकार कर रहे हो, वो कहां रहता है? प्रहलाद महाराज कहते हैं सर्वत्र, वो सर्वत्र रहते हैं। तो हिरण्यकश्यपु कहता है कस्मात स्तंभे न दृश्यते, कस्मात स्तंभे न, अगर वह सब जगह है तो इस खंभे में भी है क्या, इस स्तंभ में भी है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं दृश्यते, हम तो देख रहे हैं, हमें वो दिखाई दे रहा है। तो हिरण्यकश्यपु कहता है मैं तो न दृश्यते, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा, मैं नहीं देख रहा हूं। प्रहलाद महाराज कहते हैं दृश्यते, और प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ रहे थे खंभे को देख करके, वो देख रहे थे वास्तव में भगवान नरसिंह देव को। वो देख रहे थे प्रकट, हम नहीं देखते हैं। अरे एक साधारण मशीन देखती है भीतर की बात को और दूसरे लोग नहीं देखते हैं। एक्सरे मशीन देख लेती है ना भीतर, और हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो प्रहलाद जैसा महान भक्त यदि भगवान को देखे डायरेक्ट साकार दिव्य स्वरूप भीतर, कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तो प्रहलाद महाराज भगवान को देखकर प्रणाम कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आनंद में थे। तो इसको शंका हो गई कि जरूर इसमें है, ये देख रहा है, बिना देखे तो इस तरह से कर नहीं सकता है। परंतु बारंबार हिरण्यकश्यपु कह रहा है स्तंभ न खंभा में नहीं है, हमें नहीं दिख रहा। प्रहलाद महाराज कहते हैं हमें दिख रहा। तो इस पर कहा कि ठीक है, आज ही तुम्हारे ईश्वर की सत्ता और भक्तों के प्रति करुणा की परीक्षा है, आज दिखा देता हूं। और इतना कहकर के तलवार निकाल, तलवार तो पहले से ही लिया था, हाथ में तलवार को तैनात कर ले, बाएं हाथ में तलवार लिया, आज बता देता हूं। और उसने सोचा कि हो सकता है कि इसका भगवान या विष्णु इसमें छिपा होगा, तो उसने अपनी मुष्टिका से मारा उस खंभे पर, उस खंभा से, उस पिलर से उसकी मुष्टिका ज्यादा कठोर थी, वज्र भी विफल हो गया था उसके शरीर से, तो इसलिए मारा कि शायद विष्णु उसी में ध्वस्त हो जाएगा अगर होगा तो इसलिए मारा। देखिए दो विचार है और दोनों जस्ट विपरीत है। एक व्यक्ति कह रहा है नहीं है ईश्वर, वो भक्त की रक्षा नहीं कर सकता है, आज तुम्हारा जीवन गया, जिस ईश्वर के भरोसे तुम हो और बाप की आज्ञा के अवहेलना कर रहे हो, जो कि रियल ईश्वर है, तुम समझ सकते हो, देख सकते हो कि मैं किस तरह से जगत को कंट्रोल कर रहा हूं। और वास्तव में हिरण्यकश्यपु ऐसा था, तो कह रहा है मैं ईश्वर हूं, दूसरा कोई नहीं है, और तुम जिस ईश्वर के भक्त हो वो ईश्वर आज तुमको बचा ले, बस आज ही पता चल जाएगा कि वो है और तुमको बचा लेता है, बस तुम खत्म हुए। अंतिम बार चांस देता हूं प्रहलाद, अंतिम चांस देता हूं कि अभी भी तुम मेरा भक्त बन जाओ और छोड़ो विष्णु को, ये वहम है ये अज्ञान है, वो तुमको नहीं बचा पाएगा। प्रहलाद महाराज ने कहा वो निश्चित बचाएंगे और वो हैं। तब हिरण्यकश्यपु मुष्टिका का प्रहार किया, बाम मुष्टि से मारा, दाहिने में तलवार लिया था, बाएं मुष्टि से मारा खंभे पर। तो खंभे पर जेम ही वो मारा जोर से, तेही बहुत भयावह आवाज निकलने लगी, और वो कहां से आवाज आ रही है ये पता नहीं चल रहा था, सिंह के गरजने की आवाज, और इतनी जोर की आवाज हुई कि हिरण्यकश्यपु गिर गया वहां बेहोश होकर के, बहुत जोर से आवाज हुई और कुछ पता नहीं चल रहा था कहां से आवाज आ रही है। और उस आवाज को सुने ब्रह्मा जी, सुने सत्यलोक में और सब देवता सुने, तो जिधर से आवाज आ रही थी सब लोग विमान से चले उधर, और लोग सोचने लगे कि अरे असमय में जगत का प्रलय होगा क्या, प्रलय काल में इस तरह की आवाज होती है ऐसे ही हम लोग बैठे हैं और अकस्मात बहुत बिहड़ बिहड़ आवाज होने लगे, तो हम लोग सोचे मेरी क्या हो गया, बम गिरने लगा, क्या होगा, विनाश होगा, युद्ध होगा। तो ब्रह्मा आदि तो जानते हैं कि प्रलय काल में किस प्रकार की आवाज होती है, किस प्रकार की वर्षा होती है, किस प्रकार की आग लगती है, सब उनको अनुभव है। तो इस आवाज को सुने तो उन लोगों ने कहा हमारी विश्व का प्रलय होने वाला है क्या, प्रलय होने वाला है क्या। इस अवतार का पता उन लोगों को नहीं था, यह अकस्मात अवतार हुआ बिना नोटिस के प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। हाँ, ब्रह्मा जी आदि को कोई पता नहीं था, यद्यपि वे लोग ये जानते थे भगवान ने कहा था ब्रह्मा आदि देवताओं को कि जिस दिन ये प्रहलाद को मारना चाहेगा उसी दिन मैं प्रकट होकर के उसको मार दूंगा, प्रहलाद को बचा लूंगा। देवता लोग कहे थे कि हिरण्यकश्यपु को मारिए मारिए मारिए, तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं मारूंगा, जिस दिन वो प्रहलाद को मारना चाहेगा उसी दिन मार दूंगा। लेकिन ब्रह्मा के देवताओं को पता नहीं था कि किस दिन मारेगा तो इस तरह से देखिए एक चैलेंज है वास्तव में वैष्णवों को, आज भी ये चैलेंज दिया जाता है, अरे क्या विष्णु के फेरे में पड़े हो, जीवन खत्म हो गया, क्या सामने आ रहा है, कभी आया है सामने, सुख दुख पूछा है, क्यों विष्णु के फेरे में पड़े हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो, ऐसे कर। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप यहाँ चैलेंज कर रहा है, और जब पत्थर पर मारा तो आवाज हुई, सब देवता लोग यहाँ आएंगे। अब ये कथा है, तलवार लेकर दाहिने हाथ में, बाएं हाथ से खंभे पर मारा, तदैव तस्मिन् निनदोति भीषणो बभूव जैनंद कटाहम स्फुटत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी भयानक आवाज हुई देर तक कि उससे ब्रह्म कटाह, कटाह मैंने कौभर, ब्रह्मांड का कौभर फट गया। उस आवाज इतनी जोर की आवाज, बिल्डिंग आदि गिर गए होंगे, ये कौन सी आश्चर्य की बात। ब्रह्मांड का कौभर बहुत पक्का बनाया गया है और 7 कौभर है उसके, लेकिन ब्रह्मांड कटाह मस्फुटत, फाट गया। ऐसा इतनी भीषण आवाज हुई। यंगवै स्वधिष्णो गतो त्वजा दयाश्रुत्वा स्वधामा प्यमंग मुनिरे। जिस आवाज को सुन करके ब्रह्मा आदि यही माने कि अब हमारा लोक नष्ट होने वाला है, अब खत्म होने वाला है, ऐसा वो लोग मानने लगे। और हिरण्यकश्यप अपने पुत्र का वध करने के लिए अब पैंतरा भांजने लगा। वो तो आवाज सुना, एक बार गिरा भी, फिर उठ करके खड़ा हो गया, और अब उसको शंका हो गई कि अरे वो तो है निकट ही, वो ये नहीं समझ रहा है कि खंभा में है। लेकिन उसको उसका मन कुछ संकित हो गया कि वो अवश्य है वो, तभी वो आवाज दे रहा है। तो पुत्र का वध करने के लिए वो पैंतरा बनाने लगा, सामने तैयार होने लगा, और जिन ही पुत्र का वध करने जा रहा था तब तक खंभे को फाड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। वो देखा तो अंत सभायाम मददर्श तत्पदम वितत्र सुर जन सुरारी जुत्थपा। तो भगवान खंभे से प्रकट हुए, फाड़ दिए खंभे को। ऐसे उस खंभे को फाड़ने की जरूरत नहीं थी, भगवान तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ऐसे प्रकट हो सकते हैं, लेकिन खंभा को विदीर्ण करके और प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हुए, सुखदेव गोस्वामी इसके कारण बता रहे हैं। सत्यम विधातुम निजभक्त भाषितम व्याप्तिम च भूते सखिलेषु चात्मनः। भगवान यह दिखाना, अपने भृत्य की बात सत्य करना चाहते थे। पहला भृत्य तो प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज ने कह दिया कि मैं खंभे में भगवान को देख रहा हूं, तो प्रहलाद की बात सत्य करने के लिए खंभे से ही आए। और सनकादिक ने साप दिया था जय विजय को कि भगवान तुम्हारा वध करेंगे, तो इसलिए सनकादिक की बात को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए। जब दूसरे भृत्य हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से इसने वर प्राप्त किया था कि मैं मनुष्य से न मरूं और पशु से न मरूं, तो अपने भृत्य ब्रह्मा जी के वचन की रक्षा करने के लिए भगवान न तो मनुष्य है, न नर है, न सिंह है, नरसिंह के रूप में वे प्रकट हुए। इसी तरह के कई भक्तों ने कई तरह से कहा था, सबकी बात को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए खंभे से। तो अदृश्य तात्त भूतरूप मुद्ब हम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। उस सभा भवन में खंभा से भगवान प्रकट हुए, क्या थे, तो हिरण्यकश्यप देख रहा है, न मृगम न मानुषम, न ये पशु है और न मानुष है, मनुष्य है। इस तरह से देख रहा, वो देखने में कुछ स्तंभित हो गया, और देख रहा था तब तक तो वह रूप विकराल बढ़ने लगा बहुत जोर से उसके देखते देखते, और विकराल विकराल नाक और केसर, गर्दन के बाल, विकट दांत और पर्वत की कंदरा जैसी नाक मुंह, सब बहुत भयानक को देखा। तो लगा विचार करने, सत्वमेनम परितो पिपस्यन स्तंभस मध्यादनुनिर जिहानम नाहि मृगो नापि नरो विचित्रम। फिर वो सोचने लगा, रहे ये पशु नहीं है, तब मन में आ रहा ये पशु नहीं है, ये नर है। तो फिर कहता है नायम नर, ये नर भी नहीं है, ये पशु है। तो कहते न नर है न पशु है, न नर है न सिंह है, ये है कौन? क्यों ऐसा है? तो इस प्रकार से वो विचार कर ही रहा था तब तक भगवान का वह रूप और बढ़ा। तो सुखदेव गोस्वामी नृसिंहदेव के रूप का कुछ वर्णन कर रहे हैं, उसको सुनिए। मीमांस मानस समुत्थितोग्रत, वो मीमांसा करने लगा, तुरंत विचार करने लगा, क्या यही विष्णु है कि कोई दूसरा जीव प्रकट हो गया है? ऐसा हमने कभी नहीं सुना था। ये दो जीव एक शरीर में मढ़ा हुआ है, ये बंधा हुआ है, ये कौन है? ये भयानक। तब तक उसने देखा प्रतप्त चामी करचंड लोचनम, तपाए हुए सोने के समान आंखें थी और आंखों से इतना प्रकाश निकल रहा था कि सूरज का प्रकाश धूमिल हो गया उसके आगे। आप का अनुभव होगा कि यदि किसी प्रकाशित वस्तु के सामने उससे अधिक प्रकाश वाली वस्तु ले जाते हैं तो वह पहली प्रकाशित वस्तु धूमिल लगने लगती, इतनी ज्योति थी भगवान के आंख में और तपाए हुए सोने के समान पीली पीली आंखें थी। स्फुरत सटा केसर ब्रिजिम वितानम, और स्फुरत सटा, सटा कहते हैं सिंह के गर्दन के जो केस होते हैं, तो केसों को झटकार रहे थे बहुत जोर से, इस कारण से उनका मुंह और भयानक लगता था। और आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे कि जब केसों को भगवान झटकारते थे, केसर जिसको कहते हैं गर्दन के बाल को, तो उससे देवताओं के विमान धराशायी होने लगते थे इधर से उधर। विमान पर चढ़ने वालों का अनुभव है कि थोड़ा सा बादल से टकराने से, विपरीत हवा लगने से विमान किस तरह हिलने लगते हैं। तो लोग कहते हैं बेल्ट बांधो बेल्ट बांधो, ये करो वो करो। और भगवान नरसिंह देव के केसर के गर्दन के केस की हवा से विमान इधर उधर होने लगते थे। देवता सब आए हैं, जुट गए हैं आकाश में, और बादल तितर बितर हो जाते थे। प्रतप्त स्फुरत सटा केसर जिम्मितानन, और मुख कभी कभी भगवान नरसिंह देव खोल रहे थे, जम्हाई ले रहे थे। आपने देखा होगा सिंह को जम्हाई लेते हुए चिड़ियाघर में, जम्हाई लेता है तो उसका मुख बहुत बड़ा खुल जाता है। तो इस तरह से वे कभी कभी जम्हाई ले रहे थे। कराल दृष्टम, विकराल दांत थे बड़े बड़े, करवाल चंचल छुरांत जिह्वम, और जिह्वा ऐसी थी कि उसका अग्रभाग तलवार की धार के समान पतली थी और बहुत कठोर लग रही थी। भ्रुकुटी मुखोल बड़म, उनका भ्रिकुटी और मुख बड़ा और भयावत, स्तब्धोर दुकर्णम, और उस सिंह के नरसिंह देव के कान स्तब्ध थे और ऊपर उठे हुए थे। जब सिंह इस तरह से सावधान होता है तो उसके कान ऊपर होते हैं, पशुओं के कान ऊपर तब होते हैं जब वो सावधान होता है। तो अभी बहुत बड़े योद्धा के साथ युद्ध करना है तो भगवान के कान भी अभी खड़े हैं और ऊर्ध ऊपर की तरफ। गिरिकंद राधभुत व्यातास्य नासन, और उनका मुंह और उनकी नाक पर्वत की कंदरा के समान भयानक लग रहे थे। हनुभेद भीषण, दिवीस प्रतिशत कायम अदीर्घ पीवरा, इतना बड़ा शरीर था नरसिंह देव का, ऊपर बादलों का स्पर्श कर रहे थे। अदीर्घ पीवर ग्रीवर वक्ष स्थल मध्यमल्पम, और छाती बहुत चौड़ी थी, कमर बहुत पतली थी, और छाती के बाद तो मनुष्य का आकार था, यहां से लेकर के सिंह का आकार था सब। इस तरह का जानवर अभी कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, चाहे आदमी नहीं उत्पन्न हुआ है, जिसके आधा पशु हो आधा नीचे चार पैर हो और ऊपर आदमी जैसे टोपी लगाया हो कुछ किया हो, ऐसा नहीं देखे ना। भगवान कभी भी कुछ भी बन जाएंगे। अभी अभी कथा हुई कि भगवान अमृत बांटने के लिए स्त्री हो गए और बांट करके फिर तुरंत गरुड़ जी पर चढ़े चतुर्भुज रूप से और चले गए। ये भगवान के गुण हैं, वो इस तरह प्रकट होते हैं। चंद्रांशु गौरस छुरितम तनुर है, और भगवान नृसिंह देव के शरीर के जो रोए थे वो चंद्रमा की किरण के समान गौर वर्ण के थे। विश्वक भुजानिक सतम नखाय धम, और चारों तरफ उनकी भुजाएं थी, वे अद्भुत सिंह थे। आप सिंह भी उनको नहीं कह सकते क्योंकि ऊपर कई भुजाएं थी भगवान की, और उन भुजाओं में नख बड़े बड़े थे, वही आयुध का काम कर रहे थे। बहुत कठिन, हिरण्यकश्यपु के छाती को पत्थर कहा गया है तो भगवान के नख को छेनी कहा गया है, उसको तोड़ने के लिए। तव कर कमल बरे नख मद्भुत श्रृंगम, आपके तवकर कमल वरे, आपके श्रेष्ठ कमल वर में नखम अद्भुत श्रृंगम। नख क्या है, उसके जो सिंह है नख का अगला भाग है वो अद्भुत है। दलित हिरण्य कश्यपु तनु भृंगम केशव धृत, कैसे कहते हैं उसका मैं भूल गया, नरहरि रूप जय जगदीश हरे। तो उसके ऊपर वाले संस्कृत के श्लोक में कहते हैं, पहला श्लोक कैसे, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादाहलाद दाई ने हिरण्य कश्यपोस वक्ष शिला टंक नखालय। हिरण्य कश्यपु का जो वक्षस्थल है वो शिला है, और शिला पर जो आपका नख क्या है, टंक है, छेनी है, इस तरह फाड़ दिया भगवान ने, जैसे पत्थर को फाड़ देते हैं छेनी से, वैसे नख से फाड़ दिए थे छाती को, इसलिए इस लीला का स्मरण किया जाता है। तो यहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि नखायुधम, नख के आयुध लिए, कई हाथ थे, केवल चार ही भुजा नहीं, कई भुजाएं भगवान नृसिंह देव की हैं, और सब में बहुत बड़ा बड़ा नख था। और नख जब हिरण्यकश्यपु को फाड़ सकता था तब संसार में पर्वत आदि को फाड़ देना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। हम लोगों का नख क्या ऐसा काम कर सकता है, ये कोई पत्थर पर मारे तो वो भी दर्द उत्पन्न हो जाएगा। नेल्स, आजकल की स्त्रियां बहुत लंबा लंबा नख बढ़ा करके हिरण्यकश्यपु नहीं नृसिंह भगवान का नकल करती है, ये ठीक नहीं है, भगवान को ही नख बढ़ाने देना चाहिए। पता नहीं कहां से फैशन आ गया, वास्तव ये बहुत बुरा है। पहले न हम लोग ऐसे कहीं नहीं पढ़ते हैं, न सीता जी का नख बढ़ा हुआ है, न राधा रानी का, केवल एक सुरपणखा थे जिसका नख सूप जैसा बढ़ा है। वास्तव में कहीं किसी भी स्त्री का नख इस तरह से बेढंगा बढ़ा हुआ नहीं देखा। तो पता नहीं किस हिरण्यकश्यपु को चीरने के लिए बढ़ाई है। तो भगवान के हाथ में नख ही आयुध थे, दुरा सदम। और उस समय इतना भयानक नृसिंह देव लग रहे थे कि उनके पास कोई नहीं जा सकता था। सर्व निजे तरायुध प्रवेक विद्रावित दैत दानवम, अपने नख के आयुध से ही वे समस्त दैत्य और दानवों को भगा दिए। वो देख करके भयानक नख, जितने दानव थे सब चले भाग। और भी जब प्रहलाद महाराज को मारने जा रहा था तो दैत्यों की सभा लगी हुई थी, जब तमाशा चल रहा था ऑडिटोरियम में, तो वहां पर सब देख रहे थे, लेकिन जब नृसिंह देव का नख देखे तो सबकी टांग छूट गई, भाग चले के, रे बाप इस तरह से। और लोग भाग रहे थे तो किसी की टांग पकड़ करके फेंक रहे थे नृसिंह देव, किसी को कुछ इस तरह से देख। तब हिरण्यकश्यपु इस सेंस पर आ गया, बस बस यही हरि है, समझ गया ये हरि है, इसको मैं अब छोड़ नहीं सकता हूं। जब समझ गया कि ये विष्णु है तो ढाल ले लिया बाएं हाथ में और तलवार ले लिया। तो ढाल इसलिए लिया कि अब ये आघात करेगा उसको रोकने के लिए। वीर हाथ में जब तलवार लेते हैं ढाल, तो ढाल का मतलब है प्रतिद्वंदी के आघात को रोकना, और तलवार का अर्थ है आघात करना। ये भाई कुछ है, इसको शंका है कि विष्णु हमको मारेगा क्योंकि मैं इसके भक्त को मारने की चेष्टा कर रहा हूं। तो एवं ब्रुवन वो बोलने लगे हैं कश्यपों की, ओ इसी के हाथ से शायद मेरी मृत्यु होने वाली है और ये मुझे मारने के लिए जन्म लिया है, प्रकट हुआ है, यही हरि है क्या? यही हरि है। तो वो भी दैत्य कुंजर था, दैत्यों में श्रेष्ठ था, उसे भय नहीं हुआ। इस दशा में भी भय नहीं हुआ, नहीं तो भय होता तो या तो चरण में गिर जाता या भागता, लेकिन भागा नहीं, हमने चरण में गिरा, कोई भय नहीं हुआ, वो खड़ा हो गया लड़ने के लिए। और लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह दैत्य भगवान के सामने ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रचंड अग्निपुंज के सामने एक फतिंगा लग रहा था, और वह फतिंगा यदि आग में कूदे तो उसे जलना है, मरना है, इस तरह से तुलना कर रहे हैं। भगवान के आगे हिरण्यकश्यपु क्या है वास्तव में? कुछ भी नहीं, ये तो उनकी लीला है कि कुछ देर लड़े। न तब विचित्रम खलु सत्व धामनी स्वतेज सायो निपुरा पिबत्तमा, भगवान के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके सामने हिरण्यकश्यपु कुछ नहीं था। तब वो लिया वेग से गदा, गदा लेकर के और वेग से घुमाया और घुमा करके नृसिंह देव पर मारा, रुसा नृसिंह गदयो रुबे गया। देखिए इस तरह से लड़ाई हो रही है, कैसे कैसे हिरण्यकश्यपु वार किया भगवान पर और भगवान कैसे उसको पकड़े मारे इसका वर्णन। तो सबसे पहले गदा से वार किया, तम विक्रमंतम सगदम गदा धरो, तो गदा से जब ही मारने जा रहा था भगवान को तो ही भगवान उसको गरज कर पकड़ लिए, ऐसी आवाज दी कि उसकी आंख बंद हो गई, गदा चला नहीं पाया और सगदम गदा के साथ भगवान पकड़ लिए, बिल्कुल पकड़ लिए और वो छटपटाने लगा बिल्कुल। भगवान मारे नहीं, केवल पकड़ लिए, बहुत कड़ा पकड़े थे और इतस्ततः वो छटपटा रहा था, छटपटा रहा था और गदा से उस समय भी मारना चाहता था, हाथ में उसकी गदा थी, भगवान ऐसे पकड़े थे, वो छटपटा रहा था, मारना चाहता था। तो इसको तो कुछ देर तक भगवान उसको पकड़े रहे इस तरह से। तम विक्रमंतम सगदम गदा धरो महोर गंतर छितो जथाग्रही, तो जैसे गरुड़ जी किसी सांप को पकड़ लें उस तरह से भगवान ने उसे पकड़ लिया, पकड़ लिया अकस्मात। लेकिन उसका मनोबल न टूट जाए इसके लिए तुरंत छोड़ भी दिया। जब छोड़ दिया तो इसको विश्वास हो गया कि बस बस भाग्य हमारे पक्ष में, अब मैं इसको मार करके ही रहूंगा। लेकिन भगवान तो थोड़े काल के लिए छोड़े थे और जब भगवान छोड़े तो देवता लोग ऊपर से हाय हाय करने लगे, वो लोग सोचे कि अरे भगवान की पकड़ से ही बाहर आ गया तो ये मरेगा नहीं, तो देवता लोग असाधु मानने लगे इसको, असाध्य मन्यंत हृतव कसो मरा घनत छदा भरत सदीषणता, ये लोग लगे हाहाकार करने देवता लोग, अरे बाप रे बाप क्या होगा, भगवान के हाथ से बाहर आ गया, इतना कठिन हाथ है नख है फिर भी उस पकड़ से बाहर आ गया, अब ये नहीं मरेगा। और ये भी मान लिया कि ओहो निजवीर संकितम, ये जो नरसिंह है हमारे पराक्रम से डर रहा है, डर करके छोड़ा है। अरे बाप रे बाप, छोटी सी गदा लेकर भगवान पर मार रहा था ऐसे पकड़ में तो डर गए, डर करके छोड़ दिया। निजवीर जो संकितम मन्य माना, मान गया कि विष्णु मुझसे भयभीत हो रहा है, डर रहा है, इसीलिए दूर किया हमको, और तब सोचा कि अब इसको छोड़ेंगे नहीं। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक पर टीका लिखे हैं कि इसी तरह से भगवान एक चांस देते हैं सबको, एक चांस देते हैं, लेकिन लोग समझते हैं बस बस हम जीत गए, ये किए वो किए वो किए ऐसे किए, भगवान क्या है। तो प्रभुपाद जो हम लिखते हैं कि भगवान विपरीत बोलने का चांस देते हैं और सोचने का। भगवान के विषय में सब लोग न जान पाए, भगवान की ये भी कभी कभी इच्छा रहती है। न जानने पाए मतलब बदमाश लोग न जाने भगवान के विषय में। तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को ये सोच करके नक्ष चीर दिए, तो उस समय भी हिरण्यकश्यप बहुत भयावह दृष्टि से देख रहा था भगवान को। आंत निकलने के बाद भी अभी जी रहा था और बहुत क्रोध में भगवान पर देख रहा था व्यातान। लेकिन इस तरह भगवान ने चीर दिया उसको और कोई निकट नहीं आ रहा था। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके भक्त ब्रह्मा आदि आकर के उनको माला पहनाते हैं, जय जयकार बोलते हैं, गर्भ स्तुति करते हैं। यहाँ तो गर्भ स्तुति का कोई सवाल ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। जब देखे कि प्रभु इस रूप में प्रकट हुए हैं तो वो लोग दूर से ही प्रणाम कर रहे थे, निकट नहीं आ रहे थे। भगवान इतना भयावह रूप बनाए थे किसी का साहस नहीं हो रहा था निकट आने का। कौन आकर के भगवान को पानी के लिए पूछे, आसन के लिए पूछे, आसन स्वयं ही खींच करके बैठ गए। और माला कोई पहनाने नहीं आया तो आंत की माला निकाल कर पहन ली। सिंह के लिए तो आंत की माला स्वाभाविक है ना, और खून का फवारा उड़ा था रक्त, तो केसर पर, गर्दन पर, इधर उधर पीताम्बर पर, नीचे छाती पर, सब जगह लग गया। तो सिंह का तो यही श्रृंगार है वास्तव में। वो अच्छा लग रहे थे भगवान, बहुत सुंदर लग रहे थे, और उनका क्रोध रुक नहीं रहा था, अपने जीभ से अपना जबड़ा चाट रहे थे। और अश्रि लवाकता रुण केसरानो, सब जगह खून लगा था, आंत्र माली और आंत की माला पहन लिए थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि भगवान अपने से माला पहन ले, लेकिन यहां पर अब कोई आ ही नहीं रहा है और उस स्वरूप के अनुकूल माला आंत की ही माला होगी। कितना भयावह लग रहा होगा। हिरण्यकश्यपु की आंत की चौड़ाई भी कम से कम कई लाख योजन होगी और लंबाई तो कहना ही नहीं और उसको लपेट लिए, भयावह लग रहा था, कौन निकट आवे। और इसके बाद वहां से उठे और उठ करके जहां तहां असुरों को पटकने लगे, पैर पकड़ पकड़ करके और चीरने लगे नाक से, किसी को उठाकर पटक देना, किसी को कुछ करना, सब उसमें से बहुत लोग तो मर गए और सब भाग गए। और इसके बाद भगवान जब अपना केस झटकारे तो उससे विमान इधर उधर होने लगे, और जब गरजे तब आपने सुना कि ब्रह्मांड का कटा फट गया था, और जब पैर से चले क्रोध में तो पृथ्वी डगमग करने लगी, अति पीड़िता तो पृथ्वी कांपने लगी, शैला समुद्र पेतु और पहाड़ ऊपर उछलने लगे जो इस पृथ्वी पर थे। भगवान चल रहे थे, मारने के लिए घूम रहे थे इधर उधर, और उनके तेज से, आंख के तेज से चंद्रमा सूर्य की ज्योति फीकी हो गई। इसका मतलब कि अब धीरे धीरे अंधकार होने लगा था, यही टाइम था जब वो मार रहे थे असुरों को तो तब न चंद्रमा सूर्य की ज्योति फीकी कही जा रही है। तो इस प्रकार से भगवान लीला किए, और अब आकर के राजा का जो आसन था, मूल आसन, आकर के बैठ गए, कोई आसन दिया नहीं। इस पर बहुत से आचार्यों ने टीका किया है कि एक असुर के आसन पर भगवान क्यों बैठे। वास्तव में भगवान भीतर से ये सोच रहे हैं कि मेरे भक्त का आसन है, इस पर वह बैठा है तो वो तो बड़े स्नेह से बैठ रहे हैं, लेकिन बाहर से देखने में लग रहा है कि कोई नहीं बैठने को कह रहा है, तो जो आसन मिले बैठ जाओ तो अपने से माला पहन लेना, अपने से आसन लगा लेना, आकर के आसन पर बैठ गए। और बैठ गए तो वहां एक भी असुर का पता नहीं, तो वो तो सब मरे भागे, वही लाश पड़ी हुई थी। हिरण्यकश्यपु के घर का कोई नहीं आ रहा था, और भगवान के पार्टी के जो लोग हैं देवता वो भी नहीं आ रहे थे, अब क्या हो यहाँ पर वर्णन है कि अब देवता लोग दूर से ही प्रणाम करना चालू किए, दूर से। थोड़ी दूर पर थे, बहुत दूर नहीं थे, नाति दूर हम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लेकिन निकट नहीं आ रहे थे। तो भगवान ऐसे बैठ करके आसन पर और देख रहे थे सांस के साथ। तो जिस पर दृष्टि डालते थे वही कहता, सरकार मैं आपका सेवक ब्रह्मा हूं, रहस्य हूं। तब तक रुद्र पर दृष्टि डालते, रुद्र स्तुति करते हैं, इंद्र स्तुति करते हैं, गंधर्व लोग, जक्ष, किन्नर, नाग, सब लोग जिस पर दृष्टि डालते थे वो मैं आपका सेवक हूं, ऐसा आपने बहुत अच्छा किया, इसको मार दिया। ये तीनों लोग का मस्तक ज्वर था, हेडेक था, वास्तव में मर गया, हम सुखी हो गए। पितर लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि हमारे संतान हमको जब तिल और जल देते थे तो यह पी जाता था, तो आज इसका पेट फाड़ कर आपने हमें लौटा दिया, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमें लौटा दी। सब लोग सुखी हुए वास्तव में। और तो और प्रहलाद महाराज ने भी कह दिया कि बहुत अच्छा हुआ, इतना तक कह दिया। तो सभी देवता स्तुति कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे कि अब भगवान खुश होंगे, अब किसी को कहेंगे कि आओ निकट आओ, लेकिन किसी को नहीं कहे और न किसी की हिम्मत हो रही थी। तो ब्रह्मा जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि माता जी आप जाइए, भगवान को शांत कीजिए, बहुत परिश्रम किए और कुछ खान पान होना चाहिए, कुछ प्रसाद होना चाहिए, बहुत परिश्रम किया, आप जाइए शांत कीजिए, क्योंकि कितना भी उदंड पति हो स्त्री के सामने तो उसको ठंडा हो ही जाना है, तो आप जरा जाइए इनको ठंडा कीजिए। लक्ष्मी जी भी बड़े गर्व के साथ चली, सामने से उतना नहीं, निकट से नहीं देखी थी, जब चली शान के साथ कि हाँ मैं इनको ठीक कर दूंगी, और जब वो गई तो भाग आई, कहते ना ना ये हमारे पति नहीं है ना, हमको विश्वास नहीं है, ये खा जाएगा, सिंह खा जाएगा हमको, ये करेगा, कहीं झपट्टा मारा एक थप्पड़ भी तो हमारी तो हालत बिगड़ जाए। वास्तव में लक्ष्मी जी भाग आई कि ना अगर हमारे पति भी है तो इस समय दूसरे मूड में है, हम इस समय नहीं जा सकते, इस समय इनके पास जाना ठीक नहीं। अब वो चली आई तो अब किसकी हिम्मत हो। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज से कहा कि बेटा ये तो जानते हो कि तुम्हारे कारण भगवान क्रोधित हुए हैं, तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, और तुम जाओगे तो ये निश्चित शांत हो जाएंगे, तो जाओ देखो शांत करो, हम सब लोग भगवान की पूजा करें, इनको कुछ खाने को दें, स्तुति करें, ऐसा रूप हमने कभी नहीं सुना था, देखा था भगवान का ऐसा दिव्य अवतार, तो तुम जाओगे तो शांत हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज गए, उनको कोई भय नहीं हुआ, कोई भय नहीं हुआ। जैसे कहा गया है, श्रीधर स्वामी ने लिखा है अपनी टीका में कि सिंह का बच्चा अपने पिता सिंह के पास जाने में डरता नहीं है, और पिता जो सिंह है या माँ है वो उसके लिए भयावह नहीं है, वो दूसरे जानवरों के लिए भयावह होता है। तो बच्चा जाकर के सिंह के मस्तक पर बैठता है, उसके मुंह को अपने मुंह से चाटता है, एकदम निर्भय होकर। तो प्रहलाद महाराज तो इस रूप में देख रहे थे कि हमारे पिताजी हमारे सब कुछ, में कोई भय नहीं, वो जानते थे भगवान का स्वभाव कि हमें खाएंगे नहीं, ये तो हमारी रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। तो वे गए, एक माला लिए, माला लेकर के और गए, कोई भय नहीं हुआ, सब देवता देख रहे थे कि बच्चा जा रहा है भगवान के पास। वे गए, ऐसे माला लेकर खड़े हो गए, तो भगवान झुके, माला पहन लिए, और इसके बाद प्रहलाद को उठाकर गोद में रख लिए, और गोद में रख करके उनको चाटने लगे, जैसे सिंह चाटता है अपने बच्चे को, ये विष्णु पुराण में लिखा गया है। और चाटने लगे, चाटते चाटते भगवान ने प्रहलाद से कहा कि बेटा प्रहलाद, मुझे बहुत खेद है, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं बहुत देर करके आया, तुमको बहुत कष्ट दिया हिरण्यकश्यप। ये प्रहलाद महाराज तो बिल्कुल गदगद हो गए, और इसके बाद गोद से उतर करके भगवान को साष्टांग प्रणाम किए और स्तुति करने लगे, कहने लगे कि ये ब्रह्मा शिव और गंधर्व नाग नर ऋषिजन सभी कितनी सुंदर सुंदर स्तुति किए, लेकिन हे प्रभु आप किसी की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए, तो मैं कैसे आशा करूं कि आप हमारी स्तुति से प्रसन्न होंगे, मैं तो ऐसे ही नीच जाति में जन्म लिया हूं, असुर कुल में, लेकिन फिर भी आप भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए, बिल्कुल प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए तो सब देवता एकदम निकट आ गए। बिल्कुल निकट से, अब कोई भय नहीं था। और उसी रूप में अब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, आरती किया, भगवान के लिए प्रसाद दिया, यहां तक तो बातचीत भी होने लगी। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी जरा वर देने में सावधान रहिए, भागवत में लिखा गया है, आप जरा सोच समझ करके वर दिया कीजिए। इस दुष्ट को इतना वर दे दिए थे, ओ, आपको थोड़ा सावधानी से वर देना चाहिए। इस तरह से कहा। फिर प्रहलाद से भगवान ने कहा कि बेटा वर मांगो। प्रहलाद ने कहा कि आप यह वर दीजिए कि हमारे हृदय में कोई वर मांगने की इच्छा ही ना हो, कोई कामना मेरे हृदय में ना हो। लेकिन जब भगवान जाने के लिए तैयार हुए प्रहलाद का अभिषेक करके, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे एक बात मांगना चाहता हूं, वह यह कि मेरे पिताजी आपकी महिमा न समझ करके आपको बहुत गाली दिए, निंदा किए, और मैं आपका भक्त था, मुझे बहुत गाली देते थे, तो कृपा करके मेरे पिता का अपराध क्षमा माफ कर दीजिए और उनको मुक्त कर दीजिए, अपनी शरण में लीजिए। तो भगवान ने कहा कि पिता तो तुम्हारी दूसरी पीढ़ी में है, तुम्हारे 21 पीढ़ी के लोगों का उद्धार हो गया। जिस वंश में तुम्हारे जैसा भक्त जन्म लिया है, कहीं भी किसी कुल में यदि कोई मेरा भक्त जन्म लेता है तो कुल पावन हो जाता है, तुम्हारा वंश पावन हो गया प्रहलाद। तुम्हारे पिता के विषय में क्या कहना, वो तो मेरे अंग संग से, मेरा चिंतन करने से और मेरे शरीर का चिन्मय शरीर का स्पर्श करने से पवित्र हो गया, तुम चिंता मत करो। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज अंत में भी अपने पिता के प्रति स्नेह किए, चाहते थे मेरे पिता का उद्धार हो जाए, उनके मन में द्वेष नहीं था। तो आज के दिन भगवान यह लीला किए थे और ब्रह्मा जी से वे कहते हैं कि भक्तों पर कोई भी संकट पड़े तो उन्हें चाहिए कि वे मेरे इस रूप का स्मरण करें। भगवान स्पेशल संकट दूर करने के लिए ये रूप धारण किए हैं, बाकी रासलीला आदि करने के लिए तो कृष्ण के रूप में है ही। लेकिन भक्तों का कष्ट हरने के लिए नृसिंहदेव के रूप में, बहुत करुणामय लीला भगवान की, स्नेहमय। तो ऐसे प्रभु का हम लोग रोज स्मरण करते ही हैं, आज तो वही दिन है, तो यह स्वाभाविक है। तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि जगजीवन प्रभु जी, गुडाकस प्रभु जी हमें यहाँ आमंत्रित किए, श्री श्री राधा गिरधारी जी के चरण कमल में बैठकर भगवान नृसिंहदेव के गुणों के स्मरण करने का और प्रहलाद महाराज के गुणों का। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी मति भगवान कृष्ण में लगी रहे, यही प्रार्थना है। हरे कृष्ण।
श्री नरसिंह भगवान की, भक्त राज प्रहलाद महाराज की, श्री राधा गोविंद स्वामी शील कृष्ण पाद की, काली गौर हरि बमनन्द
हरि हरि
हरे कृष्णा।
नरसिंहाय कल्हादल्हाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलटङ्कानखालाय इतो न सिंह परतो न सिंह यत यतयमि ततो न सिंह वहेन सिंह हृदय सिंह नृसिंह मदीन शरणाम प्रपदे तव कर कमल वरेण खामधुत सिंह दलित हिरण्यकशिपु तनु भृङ्गा केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर केशव तव कर कमल वरेण खामधुत सिंगा दलित हिरण्यकशिपु तनु भृङ्गा केशव भृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे 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 स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी स्वामी जय जगदीश हरे जय नृसिंह देव जय नृसिंह देव नृसिंह देव जय नृसिंह देव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बाल हरे बाल हरे बाल गौर हरे बाल नित्य गौर हरि बाल हरे बाल हरे बाल गौर हरि बाल
सिंहदेव भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय श्री प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे